एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज की इस ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की बात करेंगे जिन्होंने पूरब और पश्चिम के विचारों को जोड़ने का एक अद्भुत काम किया,
जी।
स्वामी विवेकानंद। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आईने में हम उनके जीवन, उनके विचारों की क्रांति और उनकी उस अमिट छाप को समझने की कोशिश करेंगे।
जी हाँ, और ये समझना बेहद जरूरी है। विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक विचारक थे, एक समाज सुधारक, एक दूरदृष्टा। उन्होंने हजारों साल पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा को लिया और उसे आप कह सकते हैं 20वीं सदी के दरवाजे पर खड़ी दुनिया के लिए न सिर्फ प्रासंगिक बनाया, बल्कि उसे एक वैश्विक आवाज दी। आज हम इसी प्रक्रिया की गहराइयों में उतरेंगे।
तो शुरुआत करते हैं उस दौर से, उस माहौल से जिसमें विवेकानंद के विचार पनपे। ये 19वीं सदी का भारत था, एक तरफ ब्रिटिश राज का शिकंजा, दूसरी तरफ बंगाल में एक नई बौद्धिक और सांस्कृतिक लहर जिसे हम बंगाल नवजागरण कहते हैं। ये कैसा समय था, मतलब क्या चल रहा था उस वक्त?
देखिए, ये जबरदस्त उथल पुथल का दौर था। एक तरफ पश्चिमी शिक्षा और तर्कवाद वो भारतीय मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे, ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय चिंतक और सुधारक अपनी जड़ों की ओर लौट रहे थे, हिंदू धर्म की नई व्याख्याएं कर रहे थे ताकि वो आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकें।
हाँ, एक तरह का मंथन चल रहा था।
बिल्कुल, मंथन परंपरा और आधुनिकता के बीच, पूरब और पश्चिम के बीच।
हाँ, और इसी दौर में राजा राममोहन रॉय जैसे लोग थे जो सामाजिक कुरीतियां मिटाने की बात कर रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षा पर जोर दे रहे थे, खासकर महिला शिक्षा पर, यानी समाज बदल रहा था। और दिलचस्प ये कि इसी दौरान पश्चिम में भी भारत के प्राचीन ज्ञान, उपनिषदों, दर्शन में रुचि जाग रही थी। विवेकानंद इसी मतलब टकराव और संवाद के बीच खड़े थे।
बिल्कुल सही, और उनकी खासियत यही थी कि वे दोनों दुनियाओं में सहज थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रों, वेद, उपनिषद, पुराण का गहरा अध्ययन किया था। साथ ही वे पश्चिमी दर्शन, कांट, स्पेंसर, शोपेनहावर से भी उतने ही परिचित थे।
अच्छा।
इस दोहरी समझ ने उन्हें एक अनोखी दृष्टि दी। और फिर उनके जीवन में आए श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने उन्हें किताबी ज्ञान से परे अनुभव की दुनिया में उतारा, वो आध्यात्मिक अनुभूति करवाई।
चलिए उनके शुरुआती जीवन पर थोड़ी बात करते हैं। जन्म तो कलकत्ता के एक पढ़े लिखे समृद्ध परिवार में हुआ, नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। सुना है बचपन से ही बहुत तेज दिमाग के थे, जिज्ञासु और थोड़े शरारती भी।
हाँ हाँ, बिल्कुल, उनकी बुद्धि असाधारण थी और ऊर्जा भी गजब की थी। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। पश्चिमी तर्क और विज्ञान ने उन्हें शुरू में काफी प्रभावित किया, इतना कि वो ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे, प्रमाण मांगते थे।
अच्छा
जी, एक समय ऐसा भी आया जब वे खुद को लगभग नास्तिक या कह लीजिए अज्ञेयवादी मानने लगे थे।
और फिर वो मुलाकात हुई जिसने सब बदल दिया, श्री रामकृष्ण परमहंस से। ये कैसे हुआ? क्या नरेंद्रनाथ तुरंत प्रभावित हो गए थे उनसे?
नहीं, तुरंत नहीं। रामकृष्ण से मिलना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ जरूर साबित हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में नरेंद्रनाथ के मन में रामकृष्ण की आध्यात्मिक शक्तियों और उनके अनुभवों को लेकर गहरा संशय था। वो तर्क से हर चीज को परखना चाहते थे। लेकिन रामकृष्ण की सहजता, उनकी गहरी आध्यात्मिक अवस्था और उनका जो प्रेम था, उसने धीरे धीरे नरेंद्रनाथ के सारे संदेह मिटा दिए। उन्होंने रामकृष्ण को गुरु माना और उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक बन गए।
और 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद तो उन्होंने पूरी तरह संन्यास ले लिया, है ना?
हाँ, गुरु के जाने के बाद नरेंद्रनाथ और कुछ अन्य युवा शिष्यों ने मिलकर वराहनगर में पहले रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने संन्यास लिया और यहीं नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बने। इसके तुरंत बाद उन्होंने भारत को करीब से जानने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की।
ये यात्रा एक परिव्राजक यानी घूमने वाले सन्यासी के तौर पर करीब 5 साल चली। यूं के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही होगी? मतलब स्रोतों में इसका जिक्र तो है, पर इसकी अहमियत शायद और भी गहरी है।
बहुत ज्यादा। ये यात्रा उनके दर्शन और उनके मिशन की नींव बनी। आप कल्पना कीजिए, एक युवा सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं है, पैदल हजारों मील चल रहा है, भारत के गांवों, शहरों, जंगलों से गुजर रहा है।
हाँ बिल्कुल।
उसकी गरीबी देखी, उसकी जात पात की समस्याएं देखी, लोगों की गहरी आस्था देखी और कहीं कहीं आध्यात्मिक जड़ता भी। उन्होंने महलों से लेकर झोपड़ियों तक सब देखा। इसी अनुभव ने उनके अंदर भारत के पुनरुत्थान की वो ज्वाला जलाई और उनके व्यावहारिक वेदांत के विचार को एक ठोस आकार दिया। उन्होंने महसूस किया कि भूखे पेट धर्म की बातें करना वो बेमानी है।
तो इस यात्रा के अनुभवों ने उनके विचारों को एक दिशा दी। अब बात करते हैं उनके प्रमुख कामों की। वे मुख्य रूप से तो एक अद्भुत वक्ता थे, पर उनके विचार हमें उनकी किताबों से मिलते हैं, खासकर उनके व्याख्यानों के संकलनों से, जैसे राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, ये चार पुस्तकें आप कह सकती हैं मानव चेतना के विकास के चार मुख्य राजमार्ग हैं। इनमें सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन बदलने वाले सूत्र हैं। राजयोग जो है वो पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है, लेकिन विवेकानंद ने इसे मन को साधने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया, ध्यान की तकनीकें दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कर्म योग का उनका विचार महज कर्तव्य पालन नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मुक्ति पाने का एक क्रांतिकारी तरीका था। मतलब आप साधारण काम को भी आध्यात्मिक साधना बना सकते हैं, बस फल से मोह त्याग कर। ये मठों से बाहर आध्यात्मिकता लाने का एक जबरदस्त तरीका था, है ना?
हाँ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात लगती है।
बिल्कुल। फिर है ज्ञान योग। ये बुद्धि और विवेक के जरिए परम सत्य यानी अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समझने का मार्ग है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे तर्क और विश्लेषण से हम अपनी असली पहचान यानी ब्रह्म को जान सकते हैं।
और चौथा
भक्ति योग। और भक्ति योग है प्रेम और समर्पण का रास्ता। इसमें वे बताते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़कर उनसे एकाकार हुआ जा सकता है।
और इन सबके केंद्र में था उनका एक मौलिक विचार, व्यवहारिक वेदांत। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, वेदांत जो इतना गूढ़ दर्शन है वो व्यवहारिक कैसे हो सकता है?
यहीं पर विवेकानंद की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने कहा कि वेदांत का महान सत्य कि हर आत्मा मूल रूप से दिव्य है, कि सब में एक ही ब्रह्म है, ये सिर्फ साधुओं के लिए गुफाओं में मनन करने की चीज नहीं है।
हाँ।
इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा। अगर सब में ईश्वर है तो भूखे, गरीब, बीमार इंसान की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। यही व्यावहारिक वेदांत था। दर्शन को कर्म में बदलना, समाज की सेवा में लगाना, राष्ट्र को मजबूत बनाना।
तो फिर इसका निचोड़ क्या निकलता है? उनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या थे जिन्हें वो व्यावहारिक बनाना चाहते थे, एक तरह से समराइज करें तो?
हाँ, उनके दर्शन के कुछ केंद्रीय सूत्र थे जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, हर जीव में ईश्वर का वास, डिविनिटी ऑफ द सोल। ये सबसे बुनियादी बात है। हर इंसान, चाहे वो कैसा भी हो, अंदर से दिव्य है। हमारा लक्ष्य इसी दिव्यता को पहचानना और प्रकट करना है।
ठीक है।
दूसरा, सब एक है, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर सब में एक ही ईश्वर है तो जाहिर है पूरी सृष्टि एक है। अलग अलग नाम रूप सिर्फ बाहरी दिखावा है। यही सोच हमें सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति सिखाती है।
और धर्मों के बारे में?
तीसरा, सभी धर्म सच्चे हैं, हार्मनी ऑफ रिलीजन्स। अगर मंजिल एक है यानी ईश्वर तक पहुंचना, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सारे धर्म उसी एक सत्य तक ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने वो नदी वाला उदाहरण दिया था ना, जैसे सारी नदियां अंत में समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सारे धर्म ईश्वर में मिलते हैं।
हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है।
और चौथा, जो व्यवहारिक वेदांत का मूल है, नर सेवा नारायण सेवा, सर्विस एज वर्शिप। अगर हर जीव में शिव यानी ईश्वर है तो जीव की सेवा ही शिव की पूजा है। गरीबों, पीड़ितों, जरूरतमंदों की मदद करना सिर्फ सामाजिक काम नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है।
तो उन्होंने एक तरह से अद्वैत वेदांत को एक नया समकालीन चेहरा दिया, जिसे कई लोग नव वेदांत भी कहते हैं। उसे कर्मकांडों से ज्यादा मानवीय मूल्यों और तार्किकता से जोड़ा।
हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वेदांत की जो सार्वभौमिक मानवीय अपील है उस पर जोर दिया। उसे ऐसा बनाया जिसे पश्चिम का तर्कवादी मन भी समझ सके और स्वीकार कर सके।
और फिर 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद, ये तो उनके जीवन और भारतीय दर्शन के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। उनका वो पहला संबोधन अमेरिका की बहनों और भाइयों आज भी याद किया जाता है। कहते हैं हॉल तालियों से गूंज उठा था 2 मिनट तक।
वो एक जादुई क्षण था सच में। उस एक संबोधन ने पश्चिम को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई का एहसास कराया और विवेकानंद को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उस समय के औपचारिक माहौल में उनका ये सीधा दिल से निकला संबोधन एकदम अनोखा था। इसने तुरंत लोगों को जोड़ लिया। इसके बाद तो लगभग 4 साल तक वे अमेरिका और यूरोप में वेदांत का संदेश देते रहे, लेक्चर दिए, कक्षाएं ली और कई वेदांत सोसाइटीज की स्थापना भी की।
जब वे 1897 में भारत वापस आए तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका क्या उद्देश्य था और ये रामकृष्ण मठ से कैसे अलग है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे?
जरूर। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना का दोहरा उद्देश्य था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना और साथ ही संसार की भलाई के लिए काम करना। ये संगठन व्यवहारिक वेदांत का जीता जागता उदाहरण है।
अच्छा।
यह आध्यात्मिक विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आपदा राहत जैसे सेवा कार्यों पर जोर देता है, जबकि रामकृष्ण मठ जो है वो मुख्य रूप से सन्यासियों के जीवन, उनकी साधना और वेदांत के अध्ययन अध्यापन पर केंद्रित है।
समझ गई।
और बेलूर मठ जो कोलकाता के पास है, दोनों का मुख्यालय है। उसकी वास्तुकला भी देखने लायक है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वास्तुकला का संगम दिखता है, जो विवेकानंद के सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, अगर हम विवेकानंद की तुलना उनके समय के दूसरे विचारकों से करें, चाहे भारत के हों या पश्चिम के, तो वे कहाँ नजर आते हैं? क्या कुछ खास फर्क था?
हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो भारत के पारंपरिक संतों में जहाँ व्यक्तिगत साधना और मोक्ष पर ज्यादा जोर था, वहीं विवेकानंद ने सामूहिक उत्थान, राष्ट्र के जागरण और मानव सेवा को आध्यात्मिकता का अभिन्न अंग बनाया। वे एक कर्मयोगी संत थे और पूरब के ज्ञान को पश्चिम की भाषा और तर्क के साथ पेश करने में उनकी तुलना बाद में जैन बौद्ध धर्म को पश्चिम में ले जाने वाले डीटी सुजुकी से की जा सकती है। हालांकि विवेकानंद का फलक शायद ज्यादा व्यापक था।
और पश्चिमी विचारकों के संदर्भ में अगर देखें तो जैसे नीचे या विलियम जेम्स।
हाँ, उनकी बातों में आत्मविश्वास, निर्भीकता और शक्ति का जो आवाहन है, उसमें कुछ लोग नीचे के सुपरमैन की हल्की सी झलक देखते हैं। लेकिन विवेकानंद का आधार नीचे के व्यक्तिवाद से बिल्कुल अलग था। वो सार्वभौमिक करुणा और एकता पर टिका था।
यानी शक्ति सेवा के लिए, हावी होने के लिए नहीं।
बिल्कुल, वे शक्ति की बात करते थे ताकि दूसरों की सेवा की जा सके, न कि उन पर हावी हुआ जा सके। और अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स की तरह उन्होंने भी धार्मिक अनुभव को मनोवैज्ञानिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। और महात्मा गांधी की तरह उन्होंने भी आध्यात्मिकता और सामाजिक कर्म को एक दूसरे से जोड़ा। बल्कि गांधी जी ने खुद कहा है कि विवेकानंद को पढ़ने के बाद उनके मन में देश के प्रति प्रेम 1000 गुना बढ़ गया था।
ये तो बहुत बड़ी बात है। उनकी विरासत आज कितनी प्रासंगिक है? भारत में तो उन्हें राष्ट्रनायक का दर्जा प्राप्त है, ये हम जानते हैं।
निश्चित रूप से, भारत में वे सिर्फ एक संत नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता माने जाते हैं। उनके जोशीले भाषणों और लेखों ने गुलामी की मानसिकता से जकड़े देश में आत्मसम्मान और गौरव का संचार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बड़े नेता, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी उनसे प्रेरित थे। और रामकृष्ण मिशन आज भी दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, वो उनकी विरासत का जीवंत प्रमाण है।
और दुनिया के लिए उनका क्या योगदान रहा, मतलब भारत से बाहर?
वैश्विक स्तर पर वे अंतरधार्मिक संवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, इसलिए उनमें बैर नहीं, संवाद होना चाहिए। वे शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग और वेदांत जैसे गूढ़ भारतीय दर्शन को पश्चिम में इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
हाँ, ये तो है।
आज दुनिया भर में योग और ध्यान का जो इतना प्रचलन है, उसकी नींव रखने में विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा समझाए गए 4 योग, कर्म, भक्ति, राज, ज्ञान, आज भी आध्यात्मिक साधकों को मार्गदर्शन देते हैं। और विज्ञान और धर्म के बीच पुल बनाने की उनकी कोशिश, वो तो आज के युग में पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
उनके कुछ विचार तो सूत्र वाक्यों की तरह अमर हो गए हैं। चलिए कुछ प्रमुख उद्धरणों को याद करते हैं और उनके पीछे के भाव को समझते हैं। सबसे पहले जो शायद सबसे ज्यादा दोहराया जाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये कहां से लिया गया था?
ये मूलतः कठोपनिषद का मंत्र है जिसे विवेकानंद ने एक राष्ट्रीय आह्वान बना दिया। ये सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं था, बल्कि देशवासियों को उनकी सोई हुई शक्ति जगाने, आलस्य त्यागने और भारत के नव निर्माण के लक्ष्य के लिए भी प्रेरित करने का एक शक्तिशाली मंत्र था।
फिर शिकागो के भाषण की वो शुरुआत, अमेरिका की बहनों और भाइयों, इसके बारे में तो हमने बात की, पर ये इतना खास क्यों बन गया?
क्योंकि ये शब्द सुनने में जितने सरल हैं उतने ही गहरे थे। उस मंच पर जहां सब औपचारिक भाषा बोल रहे थे, इन शब्दों ने इंसानी रिश्ते की ऊष्मा और सार्वभौमिक भाईचारे का एहसास कराया। ये उनके पूरे संदेश का सार था कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इसने तुरंत कनेक्ट किया।
एक और गहरा विचार उनकी किताब राजयोग से, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य, प्रकृति, बाहरी और आंतरिक को नियंत्रित करके इस दिव्यता को भीतर प्रकट करना है। इसे या तो कर्म से या पूजा से या मानसिक नियंत्रण से या दर्शन से करें, इनमें से किसी एक या अधिक या सभी से और मुक्त हो जाएं। ये तो काफी कुछ कह देता है।
बिल्कुल, ये कथन उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है एक तरह से। ये बताता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, अपनी आंतरिक दिव्यता को पाना। और ये भी बताता है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, कर्म, भक्ति, ध्यान, मानसिक नियंत्रण, ज्ञान, जिन्हें योग कहा गया। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुन सकता है। ये आज़ादी है।
और ये दो भी बहुत प्रेरणा देते हैं। सबसे बड़ा पाप स्वयं को कमजोर समझना है, और हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं।
पहला वाक्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने का मंत्र है। खासकर गुलामी के दौर में भारतीयों के गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए ये कहा गया था, लेकिन ये आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही सच है। खुद को कमजोर मानना ही हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।
सही बात है।
और दूसरा वाक्य विचारों की शक्ति पर जोर देता है। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। ये बात आज का मनोविज्ञान, जिसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं, वो भी मानता है। इसलिए सकारात्मक और मजबूत विचार रखना कितना जरूरी है, ये विवेकानंद तब कह गए थे।
विवेकानंद का सम्मान तो बहुत है, लेकिन क्या उनके विचारों या कामों को लेकर कोई आलोचना या अलग दृष्टिकोण भी रहे हैं? क्योंकि अक्सर महान हस्तियों के साथ ऐसा होता है। स्रोतों में कुछ संकेत मिलते हैं इस बारे में।
हाँ, और एक संतुलित समझ के लिए उन पहलुओं पर भी बात करनी चाहिए। ये सच है, उनके अपने समय में ही कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं ने उनकी आलोचना की थी। उन्हें लगता था कि विवेकानंद वेदांत की बहुत उदार या कहें कि आधुनिक व्याख्या कर रहे हैं, और उनका समुद्र पार करके विदेश जाना भी कुछ लोगों को उस वक्त धर्म के विरुद्ध लगा था।
अच्छा, ये तो उनके समय की बात हुई। और आज के समय में विद्वान क्या कहते हैं? क्या कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण है?
हाँ, कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि पश्चिम में हिंदू धर्म को प्रस्तुत करते समय विवेकानंद ने उसे शायद थोड़ा ज्यादा सरल और एक रूप बना दिया। मतलब उन्होंने हिंदू धर्म के दार्शनिक और सार्वभौमिक पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया, और उसकी जो विशाल विविधता है, लोक परंपराएं हैं, कर्मकांडीय जटिलताएं हैं, उनको शायद कम महत्व दिया। ये प्रस्तुति पश्चिमी श्रोताओं के लिए समझना आसान थी, लेकिन शायद वो हिंदू धर्म की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती थी, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है।
एक और आलोचना उनकी मस्कुलर हिंदुइज्म या शक्तिशाली हिंदुत्व की अवधारणा से जुड़ी है, जिसका जिक्र मिलता है, वो क्या है?
हाँ, देखिए, विवेकानंद ने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने का आह्वान किया था, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें और देश सेवा कर सकें। इसे ही मस्कुलर हिंदुइज्म कहा गया। उनका उद्देश्य था आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और शक्ति अर्जित करना।
लेकिन इसकी आलोचना क्यों होती है?
आलोचना इसलिए होती है, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, कि कुछ आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादी समूह इस विचार को उसके मूल संदर्भ से अलग करके कभी कभी आक्रामक या एक्सक्लूसिव तरीके से पेश करते हैं। ये विवेकानंद के सर्वधर्म संभाव और करुणा के मुख्य संदेश से मेल नहीं खाता, तो ये एक बहस का मुद्दा रहा है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम केवल स्रोतों में दी गई जानकारी को तटस्थ रूप से रख रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से भी हैं, उनकी याददाश्त के बारे में तो बहुत सुना है।
हाँ, उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जिसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। वे पन्ने के पन्ने याद रख सकते थे। एक किस्सा मशहूर है कि उन्होंने एक ही बैठक में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कई खंड पढ़ डाले थे और उन्हें वो याद भी रहे।
अरे वाह।
हाँ, वे एक बार पढ़ी हुई किताब को शब्दशः दोहरा सकते थे। कमाल की बात थी।
और संगीत से भी उनका गहरा लगाव था, सन्यासी बनने से पहले।
जी हाँ, सन्यासी बनने से पहले नरेंद्रनाथ एक बहुत अच्छे गायक और संगीतकार थे। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बैरिटोन आवाज थी। वे ध्रुपद गाते थे, पखावज भी बजाते थे। कहते हैं जब वे गाते थे तो श्री रामकृष्ण भाव समाधि में चले जाते थे।
इतने ज्ञानी और गंभीर होने के बावजूद उनमें विनोद प्रियता भी थी और वे रोजमर्रा के कामों में भी आनंद लेते थे, जैसे खाना बनाना।
बिल्कुल, उन्हें वो अपने गुरु भाइयों के लिए खाना बनाने में, खासकर खिचड़ी बनाने में माहिर थे। उन्हें चाय बहुत पसंद थी, उनमें बच्चों जैसी सरलता भी थी और वो कई भाषाएं जानते थे, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पर उनका पूरा अधिकार था। वे बहुत अच्छे कहानीकार भी थे।
तो कुल मिलाकर देखें, स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक आधुनिक विचारक, एक पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने भारत और विश्व पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी।
निस्संदेह, वे पूर्व और पश्चिम के बीच, प्राचीन और आधुनिक के बीच, आस्था और तर्क के बीच एक सेतु की तरह थे। उन्होंने हिंदू धर्म को एक नई ऊर्जा दी, उसे विश्व मंच पर सम्मान दिलाया। उनका संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। अपनी भीतरी शक्ति को पहचानो, सब में ईश्वर देखो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो।
उनका महत्व शायद इसी बात में है कि उन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ा, उसे कर्मकांडों से निकालकर करुणा और सेवा का मार्ग बनाया। उन्होंने दिखाया कि प्राचीन ज्ञान आज की समस्याओं का समाधान भी दे सकता है और अलग अलग आस्थाओं के लोग मिलकर रह सकते हैं शांति से।
बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत की बात की, यानी ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतारने की। आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में, जहां इतने मतभेद और चुनौतियां हैं,
हाँ,
क्या विवेकानंद का ये दर्शन कि हम सब एक हैं और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें रास्ता दिखा सकता है? क्या हम इसे अपनी निजी और सामाजिक जिंदगी में उतार सकते हैं? ये सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।